भाइयों बहनों बच्चों अभी समस्त शारदा महासेवासन के सदस्य आपको 14 सितंबर 2020 का दिन शुभ हो और आप अपने गंतव्य की ओर अग्रसर होते रहे। आपको शीघ्र ही श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान का पूरा ज्ञान हो जाए और आप भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं। अब मैं श्लोक 20 पढ़ती हूँ। गुणा नेतान तृतीय तीन देही देही समुद्र भगवान जन्म मृत्यु जरा दुख मुक्तो अमृत मशुते। भगवान कहते हैं देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले उन तीन गुणों का अतिक्रम करके जन्म मृत्यु और देह अवस्था दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। व्याख्या मनुष्य मात्र के भीतर ये भाव रहता है कि मैं बना हूँ कभी भी नहीं ये अमर रहना चाहता है। अमरता की शिक्षा से सिद्ध होता है की वास्तव में मनुष्य अमर है आत्मा अमर है। यदि ब्रह्म न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। उदाहरणार्थ भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु अन्न और जल है जिससे भूख और प्यास मिट जाती है। यदि अन्न जल न होते तो भूख प्यास भी नहीं लगती अतः अमरता स्वतः सिद्ध है। परंतु जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है तब उसे मृत्यु का देव और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है। जब मैं अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूँ तब उसे अपनी स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। अतः साधु को चाहिए कि वह जन्म मृत्यु वृद्धावस्था आदि शरीर के विकारों को मुख्यता न देकर अपने चिन्ह में सत्ता आत्मा को ही मुख्यता दे। अर्जुन गुणा नेता नदी तो भगवती प्रभो किमाचारा कथम चेतन तीन गुणा अति वर्तते। अर्जुन बोले हे प्रभो इन तीन गुणों से अतीत हुआ मनुष्य तीन लक्षणों से युक्त होता है उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीन गुणों का अतिक्रम कैसे किया जाता है। तो अध्याय में गुण ही गुणों में बढ़ते हैं और तीन गुणों के विषय में हमने जाना सत्य रजो और तमो। तो अब अर्जुन भगवान से ही पूछते हैं कि जो मनुष्य गुणों से अलग हो जाता है उसका लक्षण कैसा होता है कैसा दिखाई देता है वो कैसे चलता है उसका आचरण क्या है। तो फिर मुझे ये भी बताओ कि इन तीन गुणों को से हम कैसे अलग हूँ। ये भगवान उवाच भगवान क्या कहते हैं प्रकाशम च प्रवृत्ति मोहमेव च पांडव संपूर्ण कांक्षति। श्री भगवान बोले हे पांडव प्रवृत्ति का सम्मोह ये सब अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाए तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता मनो न फंसता नहीं है। चाहे हमें ज्ञान हो चाहे मतलब प्रकाशन सत्य गुण हो प्रवृत्ति रजोगुण वो जो है तम इतने गुणों में हम हो तो भी जो गुणातीत है वो उनसे द्वेष नहीं करता गुस्सा नहीं करता और वे सभी निवृत्त हो जाए तो भी इच्छा नहीं करता। अगर मैं आ जाए तो द्वेष नहीं करता चले जाए तो वह ये नहीं सोचता कि सुंदर में आ जाए। व्याख्या वृत्तियां एक समान किसी की भी नहीं होती तीनों गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत महापुरुष के अंतकरण में भी होती हैं पर उसका उन वृत्तियों से राग द्वेष नहीं होता लेकिन अपने आप आती और चली जाती है। गुणातीत महापुरुष की दृष्टि उधर जाती ही नहीं क्योंकि उसकी दृष्टि में एक परमात्म तत्व का सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। गुणातीत महापुरुष में अनुकूलता बनी है प्रतिकूलता मिट जाए ऐसी इच्छा नहीं होती एक तो राग द्वेष नहीं होता जो गुणातीत होता है और दूसरा उसमें तो हमेशा मेरे मुताबिक चले दुनिया को युद्ध न हो तो ऐसा इच्छा उसमें नहीं होती है। उसे पता तो लगता है कि अनुकूलता है और प्रतिकूलता है, पर उस पर असर नहीं पड़ता जैसे हम लोगों पर असर पड़ जाता है ना, कि हाय बड़ा दुख का टाइम, बड़ा सुख का टाइम, ऐसा असर गुणातीत मनुष्य पर नहीं होता। पता अंतर्जन में नीतियाँ बदलती हैं, फिर स्वयं उनसे लिप्त रहता है। नीतियाँ जो है अंतर्जन में होती है न कि आत्मा में, इसलिए आत्मा निर्लिप्त रहती है। साधक सभी वृत्तियों को असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श होता है, साधक उसका न्यायी होता है। जैसे गुणातीत होता है ऐसे साधक को भी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। साधक मात्र के लिए ये आवश्यक है कि वे शरीर का धर्म अपने में न माने, नीतियाँ अंतर्करण में है, वो अपने को शरीर न माने और नीतियों को अंतर्करण में ही अपने में नहीं माने। अतः साधक नीतियों को ना तो अच्छा माने, ना बुरा माने और ना अपने में माने, कारण की वृत्तियाँ तो आने जाने वाली है, ऐसे में अंतर रहने वाला है। वृत्तियाँ हमें नहीं होती, परंतु अंतःकरण अंतःकरण क्या होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुष्टय है। चार चीजें इकट्ठे जब होती है तो उसको अंतःकरण कहते हैं। यदि वृत्तियाँ हमें होती तो जब तक हम रहते तब तक वृत्तियाँ भी रहती, परंतु ये सब का अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं तो वृत्तियाँ आती जाती रहती है। वृत्तियों का स्वयं प्रकृति के साथ है, हमारा स्वयं परमात्मा के साथ है, इसलिए वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव करने वाला समय की है आत्मा। श्लोक 30। उदासीन उदासीन गुण विचार लेते गुण वर्तनते यो अभी तिष्ठति निते, जो उदासीन की तरह स्थित है, जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बढ़ रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है वैसे हम कोई भी चेष्टा नहीं करता। व्याख्या तीन विभाग है, करना होना है और है। करना क्या, होना है और है। करना होने में होना है, बदल जाए तो उनका स्वर्थ नष्ट हो जाता है। तब मैंने करना हूँ अहंकार, एक है कि होना ही है तो उसमें मेरा अहंकार कहेगा, इसलिए हमें करना को होने में बदल देना चाहिए, इसलिए अहंकार नहीं आएगा। जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है, ऐसा संसारी मनुष्य मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूँ। अहंकार मोरात्मा करता मनते साई श्लोक में ये कहा है कि जो कर्ता बनता है उसे भोक्ता बनना ही पड़ता है। जिसमें विवेक की प्रधानता है ऐसा साधक अनुभव करता है कि क्रिया हो रही है। हमें ये सोचना चाहिए ये हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है ये हो रहा है, कह नहीं रहा, होने में करने में ये फर्क है। गुणा गुणेशु वर्तन्ते गीता अध्याय 3:28 में, अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, परंतु जिसे तक तो ज्ञान हो गया ऐसा गुणातीत महापुरुष केवल सत्ता तथा व्यक्ति मात्र है, प्राय अनुभव करता है। यो अति लेकिन मैं सत्ता संपूर्ण क्रियाओं में जो की दो परिपूर्ण है, क्रियाओं का तो अंत हो जाता है पर चिन्ह में सत्ता जो की क्यों रहती है। महापुरुष की दृष्टि क्रम बना रहकर सत्ता एकमात्र चिन्ह में सत्ता पर ही रहती है। अतः हमें क्या करना चाहिए कि जो कुछ होता है कर रहे हैं लोग वो तो करना है, लेकिन जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से गुणों की देन से हो रहा है, इसलिए हमें इसमें अपने मन को नहीं इसके साथ कोई संबंध नहीं स्थापित करना चाहिए। श्लोक 24 और 25। समान दुखा सुखम स्वस्थ समदोष्टाशम कांचना तुल्या प्रिया प्रियो धीर तुल्या निंदा तम संस्तुति मानापमान सतुल्यो सतुल्यो मित्र पक्षो सर्वां परित्यागी। गुणातीता से उच्यते जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। धीर मनुष्य कहते जैसा होता है जो वृत्तियों के आने से सुखी दुखी नहीं होता है, अपने में ही रहता है कि मैं आत्मा हूँ। जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम लगता है कि उसको मिट्टी का ढीला सामने हो चाहे पत्थर हो चाहे सोना, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। अगर सोना पड़ा तो हम कैसे ढूंढते, वो हो ये सोना उठाओ उठाओ काम आएगा। जो प्रिय प्रिय में सम लगता है, जो अपने निंदा स्तुति में सम लगता है, जो मान अपमान में सम लगता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम लगता है, जो संपूर्ण कर्मों के अवम का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। अर्जुन ने पूछा था ना कि गुणातीत कैसा होता, मुझे बताओ। तो भगवान ने बताया तो उसको मिट्टी और सोना एक जैसा लगता है, उसको जो दुख देते हैं वो भी वैसे ही, वो जो बड़े सुख देते हैं वो भी वैसे ही, ये निंदा करते हैं या स्तुति वो भी वैसे ही, कोई मान करता अपमान करता वो सम रहता है, मित्र भी हो चाहे पक्ष शक्ति हो। तो इस तरह से भगवान ने बिना मनुष्य है लक्षण बता दिए। यहाँ भगवान ने सुख दुख प्रियति मान अपमान ये आसपास सतर्द नाम लिए हैं, जिनमें साधारण मनुष्य की विषमता ही हो जाती है, साधकों की भी कभी कभी विषमता हो जाती है। इन आठ कठिन स्थलों में जिसकी क्षमता हो जाती है उसके लिए सभी अवस्थाओं में समता रखना सुगम हो जाता है। यही आठ होता है कि सुख में भी दुख, सुख दुख प्रिय प्रिय चार, निंदा स्तुति छह, मान अपमान आठ। गुणातीत महापुरुष की नाथों स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता है, वो बराबर ही बने रहते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा विचलित हो जाते हैं। श्लोक 26 मानू चाहे वो आभिचारे नक्ति योग सा गुणान संतम कल्पति, जो मनुष्य आभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है वह इन गुणों का अतिक्रम करके प्राप्ति प्राप्त हो जाता है। भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं जो भक्ति योग करता है भक्ति से ही ये गुण जो है वो चले जाते हैं, उनका अतिक्रमण हो जाता है और हम ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति तो ज्ञान चाहता है, उसे भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। ब्रह्म समग्र भगवान का ही एक अंग रूप है। कई अध्याय के 10वें श्लोक में भक्ति को ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में सगुण की उपासना को निर्गुण सत्व आदि गुणों से अतीत बताया गया है। इसलिए सोनोपासक भक्त तीनों गुणों से अतीत हो जाए। देखो भक्ति में वो शक्ति है कि उसको कुछ करना ही नहीं है, तीन गुण जो है सत्व रजो तम से वो अलग हो जाता है केवल भक्ति करने से। सगुण भगवान गुणों के आश्रित नहीं है, प्रतत गुण उनके आश्रित है। जो सत्व रजतम गुणों के वश में है उसका नाम सगुण नहीं है। प्रत जिसमें असीम ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य औदार्य आदि अनंत दिव्य गुण नित्य विद्यमान रहते हैं उसका नाम सगुण है। भगवान के द्वारा सात्विक राजस तथा तामस क्रियाएं तो हो सकती है पर वे गुणों के वश में नहीं होते। भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वतः और सुगमता से गुणातीत हो जाता है। इतना ही उसे भगवान के समग्र रूप का भी ज्ञान हो जाता है और प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ने पूछा था कि कैसे क्या करें, कैसे छूटे इन तीनों गुणों से, तो भगवान ने इस भक्ति को मुख्य बताया है। श्लोक 27 प्रतिष्ठा हूँ अमृत शाश्वत धर्म से सुख से कांति कस्य क्योंकि ब्रह्म का रवनाशय अमृत का तथा शाश्वत धर्म का एकांतिक सुख का आश्रय मैं नहीं हूँ। क्या कहते हैं भगवान, ब्रह्म तथा विनाशी अमृत का आश्रय मैं हूँ, ये मुझे निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है। शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूँ ये सगुण साकार की तथा कर्म योग की बात है। एकांतिक सुख आश्रय मैं हूँ ये सगुण निराकार की तथा ध्यान योग की बात है। बात हुआ ये हुआ कि मेरी सगुण साकार की उपासना करने से भगवान कह रहे हैं सबूत स्वीकार किया था। ये आशा लेने से भक्त को ज्ञान हो, कर्म हो, ध्यान हो, तीनों की सिद्धि स्वतः हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना है, सगुण साकार की उपासना करनी है, उसी का आश्रय लेना है, तो क्या होगा, ज्ञान योग भी हो जाएगा, कर्म योग भी आ जाएगा और ध्यान योग भी हो जाएगा। कारण के समग्र भगवान के अंश में सब कुछ विद्यमान है। भगवान ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग की प्रतिष्ठा आश्रय प्रतिष्ठा है। ओम तत्सवित श्रीमद् भगवत गीता सुरूप निशम विद्याम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद गुणते विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। मैं आपको कल के प्रश्न से आगे ले जाती हूँ। श्री महाराज जी श्री राम भाई जी ने जो अपने अनुभूतियाँ लिखी है, कल भी हमने कुछ पढ़ी थी, आपने सुनी थी प्रसंग, ये रेफरेंस जो है बड़ा ही कॉमन है, पढ़ना भी मुश्किल है। जब मैंने हिंदी में पढ़ा था तो भी मैंने इसको अवॉइड कर दिया था, संस्मरण पढ़े, लेकिन जब स्वामी जी के अंतिम समय का वर्णन आया तो मैंने उसको पढ़ा ही नहीं था, छोड़ दिया था, शायद मैं पढ़ नहीं पाई थी। तो अभी भी वो ही बात आ गई कि अब हमें स्वामी जी का ब्रह्म निर्वाण या ब्रह्म लोक को जाना, वैकुंठ धाम को जाना, इसके विषय में हमें जानना है या पढ़ना है या सुनना है। अच्छा आप सुनिए, आई सेड स्वामी जी को रामलाल जी ने कहा, आई सेड स्वामी जी आई डू अंडरस्टैंड इट, व्हेन द योगीज लीव देयर बॉडी, जब योगी लोग भक्त लोग अपना शरीर छोड़ते हैं, देयर सूक्ष्म शरीरा जिसे इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रल बॉडी अलोंग विद प्राणा प्राण वायु एंड जीव आत्मा गो बाय दिस टेंथ डोर सो एज टू से बाय कपाल मोचन। कल भी पढ़ा था, देन दे डू नॉट हैव टू टेक बर्थ अगेन एंड गेट द साल्वेशन सो लॉन्ग एज द प्राण वायु अलोंग विद जीवा गो थ्रू अदर डोर्स ऑफ द बॉडी आईज ईयर्स नोज माउथ एक्सेट्रा दे केम टू द वर्ल्ड अगेन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा। For the ordinary people, if the pranas leap from any door above the neck, it is regarded as good and they get a better position in the next life. If the pranavayu leap through the doors below navi chakra, it is not good. It is regarded as the downward placement of the jivatma. Swami said, no, all the preparations are complete. I shall go as soon as my term in this world expires. Some days after, when I again went to the temple and met Swamiji, he began to say, I have not much time left now. He went from his head, said, I feel myself duty bound to obey all your commands, but to speak of single commands. Swamiji said, no, please put your hand in my hands. I passed the feeling in his hand. Then he said, do you permit? I said, Swamiji, I so many give you permission. He said, do whatever you command to do. Swamiji said, then take care of my mummy. Do you take the responsibility? I said, Swamiji, I shall keep my promise till the end of my life. Swamiji again said, come and stand by in the temple. Wherever there is a need to do so, Baba will take care of the rest in his astral body invisibly. Baba will always remain with you. Don't worry. When there is a need, remember me. The unexpected divine help will promote him. And it has happened many times in the night. Oh, remember Swamiji, divine help has come. कल तक कल हमने शायद ऐसा पढ़ना पड़ा था। भाई एंड भाई स्वामी जी टोल्ड गीता माँ स्वामी नरेंद्र कुमार दास आल्सो अबाउट इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लास्ट राइट्स But interested to Swami Vyakti, Shri Kumar Dasji, the other devotees also came to know all about it and the time passed on. अच्छा इस ये मैं थोड़ा सा एक रेफरेंस जो रामलाल जी शायद नॉलेज नहीं था उनके या वो भूल गए लिखने कि 15 नवंबर से शादी लाल जी रात को 9 बजे से लेकर रात 6 बजे तक श्री महाराज की कुटिया में बैठते थे कुर्सी पर ताकि महाराज जी को अगर सर्दी लगे तो वो उनको गर्म पानी की बोतल देते रहते थे और मुझे कहते थे माता जी आप सो जाओ आप रात दिन कितना देखोगे आप बीमार हो जाओगे। तो ये शायद भूल गए यहाँ लिख रहे तो शादी लाल जी ने एक महीना लगभग ये बहुत सेवा की और रात के इस महीना थोड़ा चैन से सो जाती थी। In the beginning of December 87, Swamiji used to feel uneasy and diminished his food also. Anxiety of the devotees and Chihantama began to increase because anything could happen at any time. This started coming to Nambul and Vijay Swamiji daily. The final farewell was very imminent. On 13 December 1995, we got a telephone from Gita Mother Swamiji was not feeling well. But there is wrong. He is not a Supadani. He is 87 on a Sumitha. उसको 87 कर लेना ये तो माता जी का दे दिया। मैं जितना मान रहा स्वामी जी वाल नो फीलिंग वेल ऑल ओवर सीज द टेम्पल लाला स्वामी राम जी हिंदी शाली गोपिंदर चोली वी के सोडन श्री राम सीतल राधा डिवोटेड डिसाइडेड टू स्टे इन द टेम्पल दैट डे देयर वर टू डॉक्टर्स अमंग द डिवोटेड जबरदस्त सुकार जैसा नथिंग कंसर्न सोली समटाइम्स पास इज नॉर्मल समटाइम्स इट इज क्वाइट मिसिंग यू शुड बी विजिलेंट नाउ इट डिपेंड्स ऑन हिज बिल ही कैन लीव फॉर हेवनली अबाउट एट हिज ओन बिल इट इज अप टू हिम नो एट अबाउट 11:30 AM ये थोड़ा सा टाइम चलो तो आगे पीछे होते रहते हैं टू गो टू दुरा 11 PM का टाइम था लंगर एंड टेस्ट योर मील्स। मां गीता सेड ऑल ऑफ यू प्लीज गो एंड टेक प्रसाद इन द भंडारा आई विल लुक आफ्टर स्वामी जी वी ऑल वेंट टू द भंडारा व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट मां गीता हैज written in her autobiography, she told us that Swamiji said, Mummy, time of departure has come. Don't worry. I shall remain with you in the temple in the invisible form. Whenever you remember me, I shall send you the divine help in person kind of material. In the meantime, a divine blue light came out from his eyes and became invisible into the sky. Maa Gita then called us. Lalaji come up. All of us came running to the cottage of Swamiji. We were very sad to see the Swamiji lying peacefully with a divine touching his face, on his face, and the usual smile as he would talk to us. But alas, he had left to the Paramdham. We were at a loss to understand what to do now. Then Gita Ma asked us to inform all the devotees, so they were informed on phone. This information spread like a wildfire, and by the evening, long queues of the devotees were seen. The body of Swamiji was kept in Paramasan in front of the Trimurti temple so that the people at the devotees, the Janta Janardhan could pay their last tribute to him. Sundays were called and the time for the placement in Samadhi was fixed. It was getting evening today and queue of devotees were very long. So the next day was fixed. The queue to pay for the last tribute continued. A campfire was lit in front of the ground so that the devotees could pass the night and continue their vigil for the night. The devotees continued praying tributes till the next morning also. your mom, Swami Vivek ji, and Swami Kumar ji, completed the last rites and made arrangements for Samadhi, a place for Samadhi, 8 feet by 4 feet and 6 feet deep was made, and body of Swamiji was placed in the Paramasana. There were enough arrangements for dry food to be offered in the last darshan Swamiji, and the people also brought large quantity of almonds, coconut, date palms, kaju, etc. To be offered in Samadhi, people started paying the last roots in the Samadhi. The line continued to be bigger and bigger. The devotees with a heavy heart and wet eyes continued to advance and offer dry fruit in the Samadhi and bowed their heads in respect and reverence. The process continued at least for the 4 hours, and the Samadhi place was overflowing with dry fruits offered by the devotees. Then the last man paid his tributes. The Samadhi was filled with his material. At the double place, and big stones were kept only for the safety of Samadhi. Samadhi went to Vaikunthadham. After completing his bodily mission, leaving behind a relation of love, affection, and devotion by which all the devotees were born even today, he came as an unknown person on the strength of his love and affection. He became the favorite and venerable to everybody. He never exposed his name or identity even than by his universal love and affection. He became honorable as the PM of the, or CM of the state, as the father of the masses, whenever there were circumstances. So, we remember him when divine help comes. Whosoever went to him with a request for compassion, Swamiji relieved him of all difficulties and misfortune by his yoga shakti. He was the ruler of the hearts and minds of the devotees. Their highest well-wisher, and whenever we visit his Samadhi, our head bows down in reverence, and our heart feels extreme joy of ecstasy. No doubt, his kind patronage in the invisible form is always with us, with all the devotees who remember him sincerely. The next hai, jo main aapko kal padh ke sunaungi, the reappearance. Swamiji ek baar nahi, do baar, usi shareer mein, bilkul mulu shareer, wohi sab kuch, darshan dene aaye hain. Iske vishay mein kal aapko bataungi. आज शब्दों के साथ गीता माँ जय माता।